चलिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द धम्म, जय भीम। सो आई वाज सिटिंग हियर जस्ट लुकिंग एट यू ऑल,
तो यहां बैठकर मैं आप सभी लोगों की तरफ देख रहा
था, एंड आई वाज थिंकिंग हाउ फॉर्चुनेट आई एम,
और मुझे लग रहा था कि मैं कितना सुदैवी हूं।
व्हाट आई लव टू डू मोस्ट इन लाइफ इज टॉक अबाउट धम्म।
अब मैं और ज्यादा समय धम्म के बारे में बोलना चाहता हूं।
Talking about the Dhamma is gives me great energy.
Dhamma के बारे में बोलने से मुझे काफी शक्ति मिलती है.
It gives me great inspiration.
और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है.
And you're giving me a chance to talk about Dhamma.
और आप मुझे धम्म के बारे में बोलने के लिए मौका दे रहे हैं.
So thank you very much indeed for coming for this eighth night.
और आज की आठवीं शाम आप यहाँ आए हैं, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ.
After 10 days, I don't know what I'll do.
अब 10 दिनों के बाद मैं क्या करूंगा मुझे मालूम
नहीं। I'll have to try and find an audience somewhere else.
कोई और दूसरे श्रोताओं को मुझे ढूंढना पड़ेगा।
But I'm very grateful to you for keeping on coming night after night after night.
और हर रात दूसरी रात आप आते ही रहते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
When you talk about the Dhamma, well, the Dhamma fills you.
और जब मैं धम्म के बारे में बोलता हूँ तो आपके अंदर धम्म भर जाता है।
So I feel full of Dhamma at the moment.
और इसलिए मुझे धम्म से भरा हुआ लगता है।
So what we've been doing over these days is trying to follow in Baba Sahib's footsteps.
तो इन दिनों में हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब की जो कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।
And we've seen that following in his footsteps means following the path of the Bodhisattva.
और हमने देखा है कि बाबा साहब की राह पर चलना मतलब बोधिसत्व के मार्ग पर चलना।
And we've got quite a strong and clear and deep look at that Bodhisattva path.
और बोधिसत्व के मार्ग के प्रति हमने बहुत ही स्पष्ट और गहरा दर्शन हमने किया है।
We've seen that it requires preparation.
हमने देखा है कि इसके लिए पूर्व तैयारी की जरूरत होती है।
We need to develop an attitude of openness so that the bodhicitta can arise.
और हमने ये देखा है कि उसके लिए खुलेपन की, खुले मन की जरूरत होती है ताकि बोधिचित्त निर्माण हो सके।
And we do that first of all by making offerings to the Buddhas and Bodhisattvas.
और सबसे पहले बुद्ध और बोधिसत्वों को अर्पण करके हम शुरुआत करते हैं।
By bowing down before them.
उनके सामने नतमस्तक होकर हम शुरुआत करते हैं।
By reciting the three refuges.
और तीन शरणों का पठन करके हम ऐसा करते हैं।
By confessing our own shortcomings.
और हमारी कमजोरियों की पाप देखना करके हम ऐसा करते हैं।
By rejoicing in the merits of other people and even ourselves.
दूसरे लोगों के का पुण्यानुमोदन करके, स्वयं का पुण्यानुमोदन करके हम ऐसा करते हैं।
By asking for the teachings.
और धम्म शिक्षा के लिए याचना करके हम ऐसा करते हैं।
And then by transferring any merits we've gained to other people.
और आखिर में जो कुछ पुण्य हम कमाते हैं उसको दूसरों को देकर हम ऐसा करते हैं।
And if we can develop those attitudes very fully and deeply, then the bodhicitta arises.
और इन दृष्टिकोणों को हम बहुत ही गहराई से और पूर्णता से अगर निर्माण करते हैं तो हमारे अंदर बोधिचित्त निर्माण होता है।
And we've seen that the bodhicitta is our mind, but it's not our mind.
और हमने देखा है कि बोधिचित्त हमारा मन है और हमारा मन नहीं भी है।
It's a mind that's completely selfless.
और यह ऐसा मन है जिसमें पूरी तरह से निस्वार्थता होती है।
It arises within us.
और यह मन हमारे अंदर निर्माण होता है।
And it leads us to practice the Dhamma, not just for ourselves, but for the sake of others.
और इसकी वजह से हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए धर्म का आचरण करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
And once the bodhicitta arises within us, it expresses itself in the form of the bodhisattva vows.
और एक बार हमारे अंदर ये बोधिचित्त जब निर्माण होता है तो प्रतिज्ञा के माध्यम से ये प्रकट होता है।
And every evening we've been reciting those vows to try to align ourselves with the bodhisattva spirit.
और हर शाम को हम इन प्रतिज्ञाओं का पठन कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर बोधिचित्त का जो चैतन्य है, बोधिसत्व का चैतन्य निर्माण हो सके।
Once the vows are made, the bodhisattva practices the six paramitas.
एक बार प्रतिज्ञा लेने के बाद बोधिसत्व जो है छह पारमिताओं का आचरण करता है।
And we've looked at those over the last few nights.
और पिछली कुछ रातों से हम इन बातों को देख रहे हैं।
First of all is dana paramita.
सबसे पहले है दान पारमिता।
Then shila.
बाद में shila.
Kshanti.
Shanti.
And virya.
और वीर्य।
And tonight we come to dhyana paramita.
और आज की शाम हम ध्यान पारमिता की तरफ आए हैं।
And at this point we move into a much more subtle and deep aspect of dhamma.
और यहाँ पर हम धम्म के और गहरे और सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे अंग की तरफ पहुंचते हैं.
So what does dhyana really mean?
तो ध्यान का सही में अर्थ क्या है?
Dhyana is usually used to refer to certain superconscious mental states.
ध्यान जो है विशिष्ट अपनी मन की श्रेष्ठ अवस्था का को व्यक्त करता है.
We'll be looking at those a little later.
इनको हम थोड़ा बाद में देखने वाले हैं.
But in general, dhyana means the whole practice of meditation.
लेकिन साधारण तौर पर ध्यान का मतलब है सभी जो ध्यान साधना की परंपरा है उसको कहा जाता है.
So what does meditation mean?
तो ध्यान साधना मतलब क्या है?
It means working directly on your own mind.
इसका मतलब हम सीधे अपने मन पर कार्य करते हैं.
Working on your mind to raise your level of consciousness.
हम इसलिए अपने मन पर कार्य करते हैं ताकि हमारी जागृति की जो अवस्था है बढ़ सके.
So in looking at dhyana paramita, we're really getting down to the work of the bodhisattva.
और जब ध्यान साधना का हम देखते हैं तो बोधिसत्व के कार्य के गहराई में पहुंचते हैं.
And we're going to be following the bodhisattva path in a more intense and wholehearted way.
और यहाँ हम बोधिसत्व के मार्ग को बहुत ही तीव्रता से और पूर्णता से आचरण करेंगे.
Now sometimes I've heard people say that Baba Sahib was against meditation.
कभी-कभी मैं ये सुनता हूँ लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा का ध्यान साधना के विरोध में.
Well, I don't know whether he was or wasn't.
अब मुझे पता नहीं वो थे या नहीं थे.
But in the Buddha and his Dhamma, he clearly recommends meditation.
लेकिन भगवान बुद्ध और उनका धर्म इस ग्रंथ में बाबा का स्पष्ट रूप में ध्यान की सिफारिश करते हैं.
He talks about the importance of dhyana paramita.
ध्यान पारमिता के महत्व के बारे में बाबा साहब कहते हैं.
And he talks about the importance of working on the mind.
और मन पर कार्य करने का महत्व जो है इस पर बाबा साहब बोलते हैं.
So he says in the Buddha and his Dhamma that the first distinguishing feature of the Buddha's religion lay in the recognition of the mind as the center of everything.
तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसे कौन सी है तो वहां पर मन को प्राथमिक जगह दी गई.
So the mind is first. The mind comes first.
इसका मतलब मन पहले आता है.
All everything we do comes out of the mind.
जो कुछ भी हम करते हैं वो मन से निर्माण होता है.
Everything we experience is experienced by the mind.
और जो कुछ हम अनुभव करते हैं वो मन से अनुभव करते हैं.
All our happiness, all our unhappiness comes from the mind.
हमारा जो सुख है मन से आता है.
All the harm we do, all the good we do comes from the mind.
जो कुछ बुरा हम करते हैं जो कुछ अच्छा हम करते हैं हमारे मन से आता है.
So then Baba Sahib says, if mind is comprehended, all things are comprehended.
उसके बाद बाबा साहब कहते हैं अगर मन को हमने समझ लिया तो सभी बातों को समझ लिया.
If you really understand the nature of the mind, you've understood everything.
अगर सही में हम मन के स्वभाव को पहचानते हैं तो हर चीज को हम पहचानते हैं.
So he says that the first thing to attend to is the culture of the mind.
इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहली बात अगर आपको प्राप्त करना होगा वह है मन की सुसंस्कृति.
The first thing we need to do is to develop our minds.
अगर पहली बात हमें कोई करना है वो अपने मन का विकास करना.
This is what Baba Sahib says.
और यही बाबा साहब कहते हैं.
And how do you cultivate the mind?
तो फिर मन का विकास आप कैसे करते हैं?
Well, you cultivate the mind principally through the practice of meditation.
तो प्रमुख तौर पर ध्यान साधना का आचरण करके हम मन का विकास करते हैं.
Dhyana is the direct culture of the mind.
तो ध्यान जो है सीधा मन पर संस्कार करता है.
Of course, there are many other ways we can work on the mind.
और अलग उपाय भी हैं मन पर कार्य करने के.
But through meditation, you work directly on the mind.
लेकिन ध्यान साधना के माध्यम से हम मन पर सीधा कार्य करते हैं.
It's as if in doing other things, you're looking in a mirror.
जैसे दूसरी बातें आप करते हैं आप आईने में देखते हैं.
But with the with meditation, you turn directly back on the mind itself.
लेकिन ध्यान के द्वारा हम सीधे मन को देखते हैं.
And you work directly upon it.
और इसकी वजह से हम सीधे मन पर कार्य करते हैं.
And we'll see more clearly what this means as we go on.
और इसका मतलब क्या है हम थोड़ा आगे देखेंगे.
So there are four aspects to this culture of the mind.
तो मन की संस्कृति के जो है चार अंग हैं.
And my talk tonight will really be about these four aspects of the culture of the mind.
और आज मेरे इस प्रवचन का यही है कि मन के विकास करने के चार प्रमुख अंग कौन से हैं.
The first thing that we need to do is to be aware of what is actually there in our minds.
तो सबसे पहली बात हम करते हैं हम जागरूक हो जाते हैं कि मन में वास्तव में हमारा क्या होता
है. We have to be aware of the field of work.
तो सबसे पहले जिस कार्य क्षेत्र में हमें कार्य करना है उसके बारे में आप जागरूक हो जाते हैं.
Otherwise, it's a bit like a farmer who sets out to cultivate his field.
नहीं तो उस किसान के जैसा होगा जो अपनी खेती उगाना चाहता है.
He doesn't know where his field is.
और वो ये नहीं जानता कि मेरी खेती कहाँ है.
He doesn't know what's in his field.
और अपने खेती में क्या उग रहा है ये भी उसे पता नहीं.
He hasn't got a plow. He hasn't got a bullet.
और उसके पास हल भी नहीं और बैल भी.
He hasn't got the means to work on it.
और कार्य करने के लिए उस पर हथियार भी नहीं.
And he doesn't even know which field is his.
और ये भी पता नहीं कि उसका खेत कौन सा.
So first of all, we need to know where we're going to work and what is there in the field.
इसलिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ कार्य करना है और उसके अंदर है क्या.
Then secondly, we need to, through meditation, integrate our energies.
और दूसरी बात है ध्यान साधना के माध्यम से हम अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हैं.
Then thirdly, we refine and purify the mind.
और तीसरी बात है हम अपने मन को शुद्ध करते हैं.
And as a result of all that, fourthly, we're able to see things as they truly are.
और चौथी बात है वस्तुओं को जैसा है वैसा हम देखना शुरू करते हैं.
So we're going to look at these each in turn, and I'm going to try to get us to have some little bit of experience of each one.
तो इसको इसके लिए हम मैं चाहूंगा कि हम कुछ थोड़ा मोड़ा इसका अनुभव लेकर देखें.
Now we're not going to be able to do much in the way of meditation tonight, but at least we'd have a little taste.
तो हम ध्यान साधना के रूप में बहुत कुछ आप नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ी सी झलक आप देख सकते हैं.
You know, sometimes you go to the shops and they give you a little piece of food so that you can tell what it's like.
तो कभी कभी आप दुकान में जाते हैं तो उधर बर्फी का या भोजन का थोड़ा सा आपको टुकड़ा दिया जाता है ताकि उसका स्वाद आप ले सकें.
They're trying to sell some new product, so they want you to eat a little bit of it.
अब अपना कोई नया उत्पाद वो बेचना चाहते हैं इसलिए आपके स्वाद के लिए आप कुछ आपको देते हैं.
So I'm going to offer you a little bit of meditation so you can see whether you want more.
और इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहूंगा ताकि आप उसका स्वाद पहचान सकें.
And I hope that, that in that way you'll understand a bit more fully what it is that I'm talking about.
और इस तरह से आप और अच्छी तरह से जान पाएंगे कि ये क्या काम है.
And you can get some idea whether you want to practice it for yourselves.
और फिर आपको कुछ कल्पना आएगी कि आपको सही में ध्यान करने की इच्छा होती है या नहीं.
So let's start right at the beginning.
तो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं.
Let's find out where the field is.
तो अभी हम खोजने की कोशिश करते हैं कि खेत कहाँ है.
Let's find out what's in the field.
और इस खेत में क्या है उसे हम देखें.
First of all, we need to become aware of what's going on in our minds.
तो सबसे पहले हमें इस बात के प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे मन में क्या चलता है.
The mind is truly vast.
मन बहुत विशाल है.
The mind is as vast as the sky.
मन इतना विशाल है जैसे आकाश.
In a way, you could say that the mind is even bigger than the sky because the sky is in the mind.
हम ये भी बोल सकते हैं कि मन जैसे आकाश से भी ऊंचा है, बड़ा है, क्योंकि ये पूरा आसमान आकाश मन के अंदर है.
Not only is the mind as vast as the sky, it's very complex.
अब मन आकाश से ज्यादा विशाल है, इतना ही नहीं, ये बहुत जटिल भी है.
It's quite difficult to understand the mind.
और मन को समझना बहुत मुश्किल है.
So much is going on within the mind.
और मन के अंदर बहुत कुछ चलते रहता है.
And we often don't really see it very clearly.
और हमेशा हम बहुत स्पष्टता से इस बात को नहीं देख पाते.
Often our attention is wandering here and there.
तो हमेशा हमारा जो ध्यान है इधर उधर भागते रहता.
We don't know what our feelings are.
हमारी भावनाएं क्या है ये हम नहीं जानते.
Feelings are often quite complex.
हमारी भावनाएं हमेशा बहुत सारी जटिल होती है.
We don't just feel one thing, we feel several things.
हम हमें केवल कुछ एक बात नहीं लगती, बहुत बातें हमें लगती रहती.
Sometimes our thinking is very complex and confused.
हमारे विचार भी बहुत ही जटिल होते हैं.
So even we don't know where our body is properly.
और इसलिए हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमारा शरीर कहाँ है.
Sometimes we bump into things, we trip over things.
कभी-कभी हम चीजों को धड़क मारते हैं, ठोकरें मारते रहते हैं.
So the first thing to do is to try to work out where our attention is, what is going on in the mind.
इसलिए सबसे पहली बात है कि हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारा मन कहाँ जा रहा है, इस बात की तरफ ख्याल रखें.
Of course, we know to some extent all these things.
और निश्चित ही कुछ मात्रा में इन सभी बातों को हम जानते हैं.
If we weren't to some extent aware of our minds, well, we couldn't even arrive here in this hall.
और उदाहरण के तौर पर अगर मन हमारा कहाँ है या शरीर कहाँ है या अगर हम नहीं जानते होते तो हम यहाँ पर नहीं आते.
But we can become more aware, more sharply aware.
लेकिन इससे भी ज्यादा जागरूक हम निर्माण कर सकते हैं और तीव्रता उसमें ला सकते हैं.
So we need to cultivate more mindfulness.
इसलिए हमें और ज्यादा स्मृति का विकास करने की आवश्यकता है.
We need to try to become aware of what is going on in our minds.
हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है.
So I want to try a little bit of an experiment with you.
तो आपके साथ एक प्रयोग करना चाहता हूं.
You don't have to do this, it's up to you.
आपको ये करने की आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो कर सकते.
But if you'd like to get some idea about what I mean, I invite you to follow me.
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किस बारे में बोल रहा हूँ समझना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसा करने के लिए.
If you're not comfortable doing that, well, just watch, just listen.
अगर आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है तो केवल देखिए और सुनिए.
But if you want to, well, just first of all make yourself quite comfortable.
लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप जरा अच्छी ठीक तरह से बैठिए.
You don't need to get into a proper meditation posture, but just get yourself comfortable.
तो आपको बिल्कुल ध्यान की अवस्था में बैठना चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप आराम से ठीक से बैठ सकते हैं.
And just settle yourself down.
और अपने आप को थोड़ा स्थिर होने दीजिए.
And just bring your attention within yourself.
और अपना ध्यान जो है अपने अंदर लाइए.
Close your eyes if you like.
अगर चाहते हो तो अपनी आंख बंद करिए.
And first of all, take your attention to the ground on which you're sitting.
और सबसे पहले अपने ध्यान को जिस जमीन पर हम बैठे हैं, फर्श पर हम बैठे हैं, उस तरफ जाने दीजिए.
Feel the contact between your body and the ground.
और आपके शरीर और नीचे की फर्श के बीच में जो स्पर्श है, उसको अनुभव करिए.
There's just a sensation.
जो संवेदनाएं आपको हो रही हैं.
And just focus your attention on that.
और अपना पूरा ख्याल वहां लाइए.
Just feel the contact between your body and the ground.
आपका शरीर और नीचे का फर्श, उसके बीच के संपर्क को देखिए, अनुभव करिए.
Just keep your attention coming back to that sensation.
अपने ध्यान को बार बार उस संवेदनाओं की तरफ लाइए.
Extend your awareness to your whole body.
और अपनी जागृति पूरे शरीर में प्रसारित करने की, लाने की कोशिश करें.
So you feel your body as a whole.
ताकि आप अपने शरीर को एक समग्रता से देख सकें.
Just see what emotions are there.
और देखिए कौन सी भावनाएं आपके मन में हैं.
Do you feel comfortable or uncomfortable?
Kya aapko aaram dai lagta hai?
Feel happy or sad?
Kya aapko dukhi lagta hai ya sukh ka anubhav hota hai?
Just notice what your feeling is.
Aur aapki bhavnaye kaisi hai? Keval unke dekhiye.
You don't need to judge it, you don't need to change it.
Aap kya hai iska nishkarsh aapko nahi karna, use badalna nahi hai.
You just notice it.
Keval use pehchana.
If thoughts come into your mind, just notice them and let them go.
अगर मन में विचार आए हैं, तो उन्हें देखिए और जाने दीजिए.
Don't try to stop them, just let them go.
उन्हें रोकने की कोशिश मत करिए, उन्हें जाने दीजिए.
Just watch what's going on.
और देखिए क्या हो रहा है.
And slowly, when you feel ready, just bring your attention back to the front of the room, to Kumaraji and I.
जब आप तैयार हो जाएंगे तो धीरे धीरे अपने ध्यान को कुमार जी और सुमित की तरफ आने दीजिए.
And but try to keep some sense of your body and of your feelings.
अपने जब आप आंखें खोल के इधर देख रहे हैं तो अपने शरीर की संवेदनाओं को और जागृति को कायम रखिए.
So I can see that many of you have become quite concentrated. And there's really quite a high level of awareness, it seems to me. And this perhaps gives you a clue to something you could be doing quite regularly. It'd be very good if at various points during the day, you just let yourself become aware.
तो ये बहुत अच्छी बात है कि दिन में कई बार आप अपने बारे में इस तरह की जागरूकता निर्माण करें.
You just do that little exercise that I've just given you.
और
that I've just given you.
तो अभी जो सराव यादगार हमने किया है, उसी तरह का कुछ अभ्यास आप बार-बार कर सकते हैं.
If you just spent 5 minutes, 4 or 5 times a day doing that, you'd be much more aware of yourself.
अगर आप 5 मिनट तक दिन में 4-5 बार ऐसी बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जागरूकता से जी सकते हैं.
You're not trying to judge yourself.
तो आप इसमें अपने आप के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते.
You're not trying to say I shouldn't feel this, I shouldn't think that.
आप ऐसा नहीं बोलते कि मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए, वैसा नहीं लगना चाहिए.
If that's there, then it's there.
अगर ऐसी अवस्था है तो वो है.
You just notice it.
आप केवल उसे पहचान सकते.
Then you know what's going on inside yourself.
ताकि आप ये जान सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है.
And this is a very important exercise.
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी अभ्यास.
If we are really practicing meditation and mindfulness very deeply, should be able to keep up a continuous sense of ourselves like this.
अगर आप नियमित रूप से ध्यान साधना और स्मृति का सराव अभ्यास करते हैं, तो इस तरह का स्मृति आप सातत्य से रख सकते हैं.
But that's where we need to begin.
लेकिन यहीं से हमें शुरुआत करने की आवश्यकता है.
Just being aware of what's going on within us.
और केवल इस बात की जागृति करिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है.
In a very open, very positive way.
और बहुत ही खुले और सकारात्मक ढंग से.
If you feel sad, well, that's what you feel.
अगर आपको दुख का अनुभव हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप दुख हो रहा है.
You don't need to fight it at this stage.
इसके साथ संघर्ष करने की आपको आवश्यकता नहीं.
If you feel angry, well, that's what you feel.
अगर आपको संताप है, गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसे देखिए.
You just feel it.
आपको क्यों इसका अनुभव हो रहा है?
So that we begin to know more and more fully and clearly what is going on inside us.
ताकि हम और ज्यादा अच्छी तरह से जान सके कि हमारे मन में क्या चल रहा है.
So that one's perspective is quite sort of objective.
ताकि हम काफी ठोस तरीके से हम अपनी तरफ देख सके.
I think it's quite good to build into your day triggers that get you to do this.
और मुझे लगता है कि अपने दिन में ऐसे कुछ प्रोत्साहन पर बातों को करते रहना चाहिए.
If you can, you know, maybe after a meal, just stop and just experience yourself.
तो उदाहरण के लिए अगर हो सकता है तो खाना खाने के बाद में आप शांत बैठ के अपनी तरफ देख सकते.
That may not be such a good time because you may then just go to sleep.
शायद ये अच्छा मौका नहीं होगा क्योंकि ज्यादा खाना खाने से आपको नींद भी आ जाती है.
So maybe not on immediately after a meal.
तो हो सकता है ये बिल्कुल आदर्श समय नहीं होगा.
But maybe when you stop for a cup of tea.
तो हो सकता है कभी आप चाय के लिए कभी रुक जाते हैं.
Just stop, just close your eyes, just become mindful.
तो आप रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर में देखिए.
And in this way, you will definitely build the basis for Dhyana Paramita.
इस तरह से आप निश्चित रूप में ध्यान पारमिता की कुछ नींव जो है बना सकते हैं.
But you won't be able to meditate unless you are developing this sort of mindfulness.
जब तक आप इस तरह के स्मृति का विकास नहीं करते, तब तक आप ध्यान नहीं कर पाओगे.
You can't rush through the day without mindfulness and then expect to meditate.
अभी दिन भर भागते रहे कोई स्मृति न रहे और फिर आप एकदम से ध्यान को बैठे ऐसा नहीं हो सकता.
Success in meditation means being more mindful during the rest of the day.
तो ध्यान साधना में यशस्विता मतलब दिन के दौरान आपको स्मृतिमान रहना आवश्यक है.
I imagine that some of you are trying to practice meditation.
और मुझे कल्पना है कि आप में से कुछ लोग काफी अच्छी ध्यान साधना करते हैं.
And I imagine that quite a few of you may even find that difficult.
और मुझे इसकी भी कल्पना है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है.
Life in modern India is very, very demanding.
आधुनिक जगत में जीवन जो है काफी मांग करने वाला है.
You're rushing here, you're rushing there.
आप हमेशा इधर उधर जाते रहते हैं, भागते रहते हैं.
There's so much noise.
बहुत सारा ध्वनि होता है.
Things don't always go in the way that you plan them to go.
और जिस ढंग से आप नियोजन करते हैं वैसा ही घटनाएं नहीं होती.
So it may be quite difficult to maintain mindfulness.
इसलिए स्मृति को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है.
And that will mean it's quite difficult to meditate.
इसका मतलब ध्यान करना बड़ा कठिन होता है.
So if you're having difficulty with your meditation, I'd suggest this was somewhere to start.
तो अगर ध्यान साधना करने में आपको कुछ कठिनाई है तो मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत करना बहुत अच्छा होगा.
If you are throughout the day being mindful of yourself, you'll probably find it much easier to meditate.
अगर दिन भर में इस तरह से आप कुछ स्मृति का पालन करते हैं तो ध्यान साधना करना आपको काफी आसान हो सकता है.
But I think something else to remember about it.
मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ और बात की याद आ.
It's very enjoyable.
ऐसा करना बड़ा आनंददायी होता
है. That's certainly what I find when I sit like that.
जब मैं इस तरह से बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है.
It's quite pleasant, quite pleasurable.
ये काफी सुखद है.
And I certainly got a sense of some sort of pleasure in the room tonight.
और मैं निश्चित रूप से ऐसा करने से इस पूरे हॉल में कुछ सुखद संवेदना निर्माण हुई ऐसा मुझे लगा.
In fact, I got some sense that some of you just wanted to carry on sitting like that.
और मुझे ऐसा लगा कि आप में से कुछ लोग इसी तरह से बैठे हैं ऐसे भी शायद उनकी इच्छा हो.
Maybe you'd rather I hadn't started talking.
अब शायद आपको ऐसा भी लगा होगा कि सुबुद्धि ने बोलना शुरू नहीं किया होगा तो अच्छा.
But it's my job to give you a talk, so I had to carry on.
लेकिन मेरा काम ही आपको प्रवचन देना है तो मुझे अपना काम करना पड़ेगा.
But yes, I got the sense that you definitely were enjoying the experience, at least some of you.
तो मुझे इस बात का अंदाजा आया है कि इस तरह की शांति का आप सही में अनुभव उसमें आनंद लेते हैं.
So quite often it's quite enjoyable just sitting there, just being mindful.
बहुत बार इस तरह से बैठना और स्मृतिमान होने में आनंद मिलता है.
And if you can build that into your day, I think you'll get it'll give you a lot of pleasure and your day will go more smoothly.
अगर आप अपने दिन में इसका उपयोग करते हैं तो आपको आनंद मिलेगा और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा.
And it's particularly good if you're just able to be quiet.
और खास करके अगर आप मौन का कुछ पालन कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं तो और अच्छा.
You don't have to talk, you're just silent.
आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आप केवल शांत रह सकते हैं.
And you can just see what's there.
और देख सकते हैं कि क्या चल रहा है.
I certainly try to build this into my own day.
और मैं अपने जीवन में ऐसी बात करने की कोशिश करता हूँ.
As often as I can, just sit doing nothing.
और जितनी ज्यादा बार हो सके मैं केवल कुछ न करते हुए कुछ समय बैठने की कोशिश करता हूँ.
Just watching what's going on.
और क्या चल रहा है अंदर उसको देखता हूँ.
And the mind is so interesting.
और मन बड़ा दिलचस्प है.
Even when it's painful, it's interesting.
जब कोई दर्द भी होता है तो भी बड़ा दिलचस्प बात होती है.
So it produces such interesting images.
मन में बहुत ही दिलचस्प ऐसी प्रतिमाएं निर्माण होती रहती है.
Such interesting thoughts.
और इतने दिलचस्प विचार निर्माण होते रहते
हैं. And there's so many subtle feelings.
बहुत सारे सूक्ष्म भावनाएं निर्माण होती रहती है.
So if you can be interested in the mind, you'll find a wealth of things there.
अगर आप मन के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी संपत्ति है ऐसा लगेगा.
It's often said that modern man goes exploring everywhere.
ऐसा हमेशा कहा जाता है कि जो आधुनिक इंसान है हर जगह कुछ खोज करने निकलता है जाता है.
We go to the moon, we're trying to find out what's on Mars and so on.
हम चंद्र पर जाते हैं, मंगल पर जाते हैं ये खोजने के लिए कि वहां क्या होता है.
But we don't look at what's inside us.
लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है.
There's a whole universe inside us.
हमारे अंदर एक पूरा विश्व है.
And a really, really interesting one.
और ये विश्व बहुत ही दिलचस्प है.
So if we just focus a little bit within, we'll find something very, very interesting indeed.
और इसलिए अगर हम अपने अंदर कुछ ध्यान देते हैं, एकाग्र करते हैं, तो बहुत सारे दिलचस्प बातें हम देख सकते हैं.
And it's really enjoyable talking to other people about what you see.
और ये बहुत ही आनंद की बात होती है इसके बारे में हमें क्या कैसा अनुभव है लोगों के साथ बांटने में.
So that's the first level of meditation.
तो ये पहली स्तर है एकाग्रता.
And it's an important basis for meditation.
और ये ध्यान साधना की एक महत्वपूर्ण ऐसी बीम है.
If you've got that greater awareness of yourself, you'll find meditation itself very much easier.
अगर इस तरह से आप अपनी बुनियाद बनाते हैं तो आपको ध्यान साधना काफी आसान लगेगी.
So the next stage is the stage of integrating our various energies.
दूसरा स्तर आता है उसको अपनी अलग-अलग शक्तियों को इकट्ठा करने की वो दूसरा स्तर.
The mind is occupied with so many different things.
मन में बहुत सारी चीजों मन भरा हुआ होता है.
In order to live in the modern world, one's mind has to be constantly switching from one object to another.
अगर इस आधुनिक दुनिया में जीना है तो हमारा मन हमेशा इस चीज से उस चीज में ऐसा भागते रहता
है. I've been driven in by a very good driver every day.
हर दिन एक बहुत अच्छे ड्राइवर है जो मुझे शहर में लाते हैं.
And I've just been watching him as he drives.
और जैसे वो गाड़ी चलाते हैं तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूं.
Well, when you're driving in India, you have to be so sharp, so aware.
भारत में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको इतना जागरूक रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है.
Cars can come from anywhere.
अब कार कहीं से पूछ सकती है.
Somebody can walk from anywhere.
और कहीं से कोई चल के आ सकता है.
A cow can come.
और गाय भी आ सकती है.
That's something quite strange for us coming from England, anyway.
और इंग्लैंड से आने वाले हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी विचित्र बात लगती है.
There's no cows on the road.
वहाँ पर रास्ते पर कोई गाय नहीं है.
And a cow can do anything. It can walk anywhere.
अब यहाँ तो गाय कहीं पर भी कहाँ पर भी चली जा सकती है.
So just driving along demands one's attention to so many different things.
इसलिए जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये बहुत सारी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है.
And in the course of our day, we're switching from so many different objects.
और इसलिए पूरे दिन में बहुत सारे अलग-अलग वस्तुओं की तरफ हमारा ध्यान पड़ जाता
है. And it can be quite difficult to maintain some sort of continuity of consciousness.
और इसलिए अपनी जागृति का सातत्य रखना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है.
So let me give you an example.
तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा.
Maybe you decide to meditate.
तो समझिए कि आपने ध्यान साधना करना तय कर.
You wake up in the morning and you decide, well, this morning I will start with meditation.
आप सवेरे उठते हैं नींद से और आप निश्चित करते हैं कि मैं अभी मैं ध्यान करूंगा.
And so you get up and you start to prepare yourself.
फिर आप उठ जाते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं.
And then the child gone off to school but comes back forgotten something.
और अभी आपका बच्चा स्कूल तो चला गया लेकिन फिर से भागते हुए वापस आता है क्योंकि वो कुछ भूल गया.
And said, "Mummy, Daddy, please give me what I've forgotten."
और कहते हैं कि मम्मी डैडी मुझे कुछ ये दो वो भूल गया हूं.
So you have to go and deal with that.
तो आपको उठना पड़ता है वो कुछ करना.
I can see many of the ladies are nodding their heads. They know exactly what I'm talking about.
मुझे पता है कि बहुत सारी महिलाएं अपना सिर हिला रही हैं तो शायद ऐसी बात उनके साथ होती होगी.
You have to just deal with it.
तो आपको ऐसी परिस्थिति में कार्य करना ही पड़ता है.
And well, you go and do that.
तो आप जाते हैं वो काम करते हैं.
But while you're doing that, you hear next door in the flat next door something on the radio.
अब ऐसा काम आप करते हैं तो तुरंत आपको पता चलता है कि पड़ोसी के घर में रेडियो शुरू हो गया.
You hear some Hindi song.
तो कोई हिंदी गाना शुरू हो जाता है.
So you find yourself singing that song to yourself.
और लगता है कि आपके मन में आप गुनगुनाना शुरू कर दिया.
And then you think, well, I haven't seen that film.
और आप लगता है ये फिल्म तो मैंने देखी नहीं.
Or I've only seen it 5 times. I want to see it again.
या बोल सकते हैं यार ये फिल्म तो मैंने 5 बार देखी है अब फिर से बार गाना पड़ेगा.
So you think, well, I'll ring my friend and suggest that we go to the film tonight.
तो आपके मन में विचार आता है कि चलो अपने दोस्त को फोन करते हैं उसको बोलते हैं कि चलो ये फिल्म देखने जाएं.
And so you ring the friend.
तो फिर आप अपने मित्र को फोन करते हैं.
And you talk about the film.
तो आप सिनेमा की बात करते हैं.
Then you talk about something else.
और फिर आप दूसरी बात करते हैं.
They want to tell you something.
उनको भी आपको कुछ बताना होता है.
That reminds you of something.
आपको उससे कुछ और याद आता है.
And so an hour later, you haven't done your meditation.
अब एक घंटा बीत जाता है इसमें आपने अपना ध्यान किया ही नहीं.
Your mind has moved from one thing to another.
आपका मन एक बात से दूसरी बात पर चला गया.
You haven't been able to maintain a continuity of concentration.
और आपकी एकाग्रता का सातत्य आप नहीं रख पाए.
And life is it makes it very difficult for us to maintain that concentration.
और अपने जीवन इस तरह का सातत्य रखने में एकाग्रता रखने के लिए बड़ा मुश्किल कर देता है.
In the West we're quite privileged.
पश्चिम में हम काफी मतलब सुखी भी हैं.
We live quite comfortable lives.
हमारा जीवन काफी सुखकर होता है.
And there's not so much external demand upon us.
और बाहर से बहुत सारी जो मांगे हैं वो हमारे तक नहीं आती.
But here in India, I know that your lives have so many demands upon them.
लेकिन भारत में ऐसा जीवन होता है जो बहुत सारी चीजों की तरफ देखना पड़ता है.
So many people calling for your attention.
और बहुत सारे लोग आपका ध्यान आकर्षित करते हैं.
Such strong pressures on you.
और बहुत सारे दबाव आप पर होते हैं.
And it's very easy just to find yourself all the time responding to the demands that are placed upon you.
और ये इसलिए जो कुछ मांगे आपकी तरफ से होती है उसके तरफ आप ध्यान देने के लिए हम बहुत सारा समय गवा सकते हैं.
So life is quite distracting.
इसलिए अपना जीवन बहुत ही विचलित जीवन होता है.
It's difficult for you to maintain or experience a deep flow of continuing consciousness.
इसलिए अपनी एकाग्रता का जो गहरा प्रवाह है, सातत्य है, उसको कायम रखना आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है.
It's a bit as if your mind is like water.
जैसे कि आपका मन पानी जैसा है.
And it's just flowing here and there.
और ये पानी जैसे जहां उसको लगता है वहां जाते रहते हैं.
I've been here in the monsoon and I've seen that.
यहां पर मैं मानसून में था और मैंने देखा.
There's water just everywhere.
और जो पानी जो है हर जगह का.
And it's flowing in all sorts of different directions.
और हर दिशा में ये पानी बहते रहता है.
There's just water flowing this way, water flowing that way.
पानी इस तरफ भी बहता है, उस तरफ भी बहता है.
And it doesn't sort of form one continuous stream.
और इसका कोई एक बड़ी धार नहीं बनती.
But eventually, all the water flows down into the river.
लेकिन आखिर में सब पानी जो है किसी नदी में बहते जाता है.
And it flows along with a very strong, deep current.
और फिर इसकी बहुत बड़ी धार बनती है और बहुत बड़ी नदियाँ से वो एक साथ बहने लगता है.
So we want to try to experience that integration of our minds like a deep, strong flow of the river.
और मन को भी हमें इसी तरह से अनुभव करने की कोशिश करना है जैसे नदियाँ की बहुत गहरी और बड़ी ऐसी धार.
So this second stage of meditation involves trying to bring all the energies of the mind together so that they flow along like that deep, calm river.
तो ध्यान साधना का दूसरा अंग यह है कि अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा लाना और जैसे नदियों का पानी बहुत ही गहरा एक साथ बहता है उसका उसे उस तरह से बहने देना.
And the method that we usually use is to concentrate on a particular object.
और इसके लिए पद्धतियां जो हम उपयोग करते हैं वह है किसी एक विशिष्ट विषय पर एकाग्र होना.
We set up an object in front of us and focus our attention on it.
हम हमारे सामने कोई विषय वस्तु रखते हैं और उस पर हमारा पूरा ध्यान एकाग्र करते हैं.
And you keep trying to bring your mind back to that object.
और हम बार बार उसी वस्तु के तरफ अपना मन लाने की कोशिश करते रहते हैं.
In a way, it doesn't matter what the object is.
अब एक तरह से कौन सा विषय है वस्तु है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
And in the Buddhist scriptures there are examples of all sorts of things being used as objects for concentration.
और बौद्ध ग्रंथों में बहुत सारी वस्तुओं का उदाहरण दिया जाता है एकाग्रता के लिए जिनका उपयोग किया जाता है.
You could use a flower for instance.
आप फूल का उपयोग कर सकते हैं.
Sometimes in some Buddhist traditions they make a disc of colored clay.
बहुत कुछ बौद्ध परंपराओं में एक थाली में अलग रंगों के फूलों का एक रंग बनाया जाता है.
And you just focus your attention on that.
और फिर फूलों पर आप अपना मन एकाग्र करते हैं.
Or you can concentrate on a sound.
और या आप किसी ध्वनि पर एकाग्र होते हैं.
In some sense, it doesn't matter what you focus your attention on.
तो एक अर्थ से आप किस पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
But the most usual focus of concentration is the breath.
लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर किस पर ध्यान एकाग्र किया जाता है वह है आपका श्वास.
I've often wondered why the breath.
हमेशा मुझे ये सवाल पड़ता है कि ये श्वास ही क्यों?
I think the reason is that the breath is well, it's sort of inside us.
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण ये होगा क्योंकि श्वास हमारे अंदर होता है.
And the breath is very sensitive to our mind.
श्वास जो है हमारे मन के प्रति काफी संवेदनशील होता है.
You know that well your breath very quickly reflects your emotions.
आप ये जानते हैं कि आपका श्वास जो है आपकी भावनाओं पर काफी तुरंत प्रभाव करता है.
If you're excited your breath comes very very fast.
अगर आप उत्तेजित हैं तो आपकी श्वास जोर से चलने लगती है.
If you're very relaxed your breath is very slow and steady and deep.
अगर आप बहुत ही आराम से बैठे हैं तो आपकी श्वास जो है बहुत ही हल्के से चलती है.
So the more concentrated you are, the deeper and the stiller and the more subtle your breath becomes.
तो अगर आप जितने ज्यादा एकाग्र होते हैं उतना ही आपकी श्वास जो है और सूक्ष्म होती है और गहरी होती है.
And that takes you deeper into concentration.
और इसकी वजह से आप एकाग्रता में और गहराई में जाते हैं.
And that I think is probably the best place to start.
और मुझे लगता है कि यही जगह है जो मतलब जहां शुरुआत करनी
चाहिए. There's another thing about the breath.
श्वास के बारे में और भी एक बात है.
It's very pleasurable to experience the breath, usually. If you watch the breath, if you feel the breath, you can get quite a bit of enjoyment out of it. It sometimes seems a bit strange, but it can be a very pleasurable experience indeed. And the breath is so essential to us. So watching the breath helps us to concentrate. Gradually all our energies settle upon the breath. It's sometimes said to be like a herd of cows. And you tie those cows to a tree. And they wander around pulling at their rope. But they have to keep coming back to the tree. Eventually they just settle down under the tree. They're just happy to be there under the tree. So in the same way, you use the breath to bring all the different energies of your mind together. You're not forcing them there, you're bringing them there subtly and gently. So let's get a little bit of experience of this. You've probably, all of you, many of you have done this practice, but do we just get 5 or so minutes of just watching our breaths? So again, I'll just ask you to make yourselves comfortable and upright. And again, just close your eyes. Let go of the world around you. Be aware of sitting on the ground. Be aware of that sensation of contact with the ground. And bring your attention to your body as a whole.
और अपने पूरे शरीर की तरफ अपना ध्यान लाइए।
And then focus on the breath.
और अपने श्वास पर एकाग्र होइए।
Just with your mind, follow each breath as it comes in and goes out.
जैसा हर श्वास आती है और जाती है, तो अपने मन को भी उसके साथ आने दीजिए।
If thoughts come into your mind, just let them go. Come back to the breath.
अगर आपके मन में कोई विचार आते हैं, तो उन्हें जाने दीजिए, अपने श्वास की तरफ वापस आइए।
Just enjoy breathing.
श्वास में आनंद लीजिए.
Keep coming back to the breath.
अपने ध्यान को फिर से श्वास की तरफ लाते रहिए.
When you feel ready, just let go of the breath and bring your attention here to the front.
अब जब आप तैयार हो जाएंगे, तो अपने श्वास की तरफ का ध्यान इस तरफ आगे रखिए, अपनी आंखें खोलिए.
So if you can keep up this sort of practice quite regularly, it will help to integrate your energies.
अगर इस तरह की अभ्यास आप हमेशा करते रहते हैं, तो आपको अपनी शक्ति को एकाग्र करना संभव हो सकता है.
I can imagine there's quite a range of different experiences.
मुझे कल्पना है कि अलग-अलग प्रकार के अनुभव इससे आते हैं.
I got the impression that quite a number of people did become quite concentrated.
और मुझे पता है कि कुछ लोग काफी एकाग्र हुए हैं.
And perhaps some others found it much more difficult.
और शायद कुछ लोगों के लिए इस तरह से एकाग्र होना मुश्किल होता है.
But that's the way it is.
लेकिन बात ऐसी ही है.
Sometimes it's easy, sometimes it's not easy.
कभी-कभी आसान होता है, कभी-कभी मुश्किल होता है.
But just the effort to bring your attention back to the breath integrates you.
लेकिन केवल उतना प्रयास कि आप अपने श्वास की तरफ अपना ध्यान फिर से वापस लाते हैं.
So you don't need,
आपको इससे एकाग्रता मिलती है, इकट्ठापन होता है.
You don't need to feel, I didn't do it properly, I couldn't do it.
आपको ऐसा लगने की आवश्यकता नहीं कि मैंने ठीक से नहीं किया, मैं ठीक से नहीं कर सकता.
Sometimes you experience the benefits later.
कभी-कभी इसके फायदे जो है आपको बाद में मिल सकते हैं.
Just by making the effort to focus your attention, later some reward is there, as it were.
तो कभी-कभी आपका ध्यान एक विशिष्ट जगह पर लाने की वजह से आपको उसके बाद में कभी उसका उपयोग मिलता है.
And if this is an experience you have every day, it'll influence your whole life.
अगर हर दिन का आपका अनुभव होगा, तो आपके जीवन में उसका काफी अच्छा असर आपको मिलेगा.
You'll find that your energies are much calmer, much deeper, much more whole.
और आप देखेंगे कि आपकी शक्ति बहुत शांत हुई है और बहुत ही समग्र एक इकट्ठा हुई है।
And you'll probably find that you're much more efficient in what you do in your daily life.
और शायद आपको ये भी पता चलेगा कि अपने दैनंदिन जीवन में आप जो कुछ करते हैं उसमें आप काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं।
But you must see for yourselves.
लेकिन आपको इसका अनुभव खुद ही लेना पड़ेगा।
That's what the Buddhist tradition says, but see for yourself.
यही बौद्ध परंपरा कहती है कि खुद देखिए।
It's your experience.
ये आपका अनुभव है।
So you can see if the application of concentration in this way has a beneficial effect on your life.
इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस ढंग से कार्य करने से आपके जीवन में कोई उपयोग होता है या नहीं।
And I think that if you're doing something like this mindfulness of breathing exercise every day, that will be manageable.
अगर इस तरह से आप स्मृति का अभ्यास करते हैं हर दिन तो इसका कुछ आपको स्फूर्ति के लिए उपयोग हो।
It's possible to do it every day, even with a busy and difficult life.
बड़े ही अपना जीवन व्यस्त हो और मुश्किल हो, फिर भी हर दिन ऐसा करना संभव होता है।
And that can have a very beneficial effect.
और इसका काफी अच्छा परिणाम, फायदेमंद परिणाम हो सकता है।
But it's difficult to go further than that in the midst of daily life.
लेकिन हर दिन के इस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसको और आगे ले जाना मुश्किल हो जाता है।
Some people can, other people won't be able to.
कुछ लोगों के लिए संभव होगा लेकिन बाकी लोगों के लिए बड़ा कठिन होगा।
You just try.
लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं।
And this will have in itself a positive effect.
लेकिन इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको दिखाई देगा।
But the next stage does take us quite a bit further.
लेकिन अगला जो चरण है इससे भी आपको आगे ले जाता है।
In the next stage of meditation, we refine and purify our energies.
तो ध्यान साधना के अगले स्तर पर आप अपनी शक्तियों को शुद्ध करते हैं।
And we begin to experience what are known as superconscious mental states.
और हम धीरे-धीरे हमने जो उच्च जागृति की अवस्था है उसका अनुभव कर सकते हैं।
They're very subtle, very fine states of mind beyond the physical senses.
तो ये बहुत ही हमारे जो इंद्रियों के ही पार जाने वाली ऐसी सूक्ष्म मन की अवस्था।
And they're available to all of us.
और ये जो स्थिति है हमारे सबके अंदर उपस्थित होती है।
They're intensely pleasurable, very inspiring.
और ये बहुत ही तीव्रता से सुखद होती है, प्रोत्साहन देने वाली होती है।
And in Buddhist tradition, they are used as ways of purifying the mind.
और बौद्ध परंपरा में इसका उपयोग मन को शुद्ध करने के लिए किया जाता है।
Purifying and clarifying the mind.
मन को शुद्ध करना और स्वच्छ करना।
And if you can get some experience of them, that will be very beneficial.
अगर इस तरह का कोई अनुभव आपको आता है तो आपके लिए शायद बहुत ही उपयुक्त बात होगी।
It's not strictly speaking essential.
अब ये बहुत आवश्यक ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते।
Some people have a great ease of getting into those states.
कुछ लोगों को ऐसी मन की अवस्था में जाना बड़ा आसान होगा।
Some people don't find it so easy.
लेकिन कुछ लोगों को ये आसान नहीं लगेगा।
It's just a matter of temperament and character and circumstance.
तो ये केवल आपकी स्थिति कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है और वातावरण कैसा इस पर अवलंबित होती है।
But everybody can have at least some experience of a much deeper level of concentration.
लेकिन हर एक का कुछ न कुछ और गहराई की एकाग्रता का अनुभव हो सकता है।
So the method is really the same as the one we've just been doing.
इसकी पद्धति वैसी ही होती है जैसी अभी हमने की है।
You concentrate on an object.
आप किसी विषय पर एकाग्र होते हैं।
But you do it under circumstances where you can go much further.
लेकिन आप ऐसी स्थिति में अगर कुछ अलग स्थिति में करते हैं तो इससे भी आप आगे जा सकते हैं।
You try to meditate for longer.
आप और ज्यादा समय के लिए ध्यान साधना करते हैं।
And you try to be in circumstances which support meditation.
और आप ऐसी परिस्थिति में रहने की कोशिश कर सकते हैं जो आपकी ध्यान साधना को मदद कर सकती है।
And what happens as your concentration deepens is that you cease to be aware of the senses.
तो जब आपकी एकाग्रता गहरी होती है तो क्या होता है कि आप अपने जो संवेदनाएं हैं, इंद्रिय हैं, उसमें आप गहराई में जाते हैं।
It's not of course that the senses aren't there.
ऐसा नहीं होता है कि आपके वहां इंद्रिय नहीं होते।
But it's as if they go right to the edge of your awareness.
लेकिन ऐसी बात होती है जैसे आपके इंद्रिय जो है जैसे एकाग्रता के आपकी अवस्था के जैसे बाहर होते हैं।
Let me give you an example.
मैं उदाहरण आपको देता हूं।
You know the other day I talked about that dog that barked when I was meditating in the morning.
मैंने कल आपको बताया था कि जो मैं जब ध्यान करने को बैठता हूँ तो कुत्ता भौंकने लगता है।
It's this dog that knows I'm starting to meditate.
अब ये कुत्ते को पता हो जाता है शायद कि मैं ध्यान करने को बैठा हूँ।
And as soon as it knows I'm starting to meditate, it starts barking.
और जैसे ही मैं ध्यान की शुरुआत करता हूँ ये कुत्ता भौंकने लगता है।
Well, Sure enough, the next day the dog barked. But this morning I came out and I said to Jyotika and Manjushura, "Oh, the dog didn't bark today." Well, they said, "It didn't bark as much, but it did bark." But this morning I got quite concentrated. And I didn't notice the dog. In my mind was absorbed in the object of concentration.
तो मैं अपने मन को मेरा जो ध्यान का एकाग्रता का विषय है उसमें एकाग्र कर सका।
I don't know what will happen tomorrow.
अब मुझे पता नहीं कल क्या होगा।
I think that perhaps talking about meditation like this, I hope I'll be more concentrated.
तो हो सकता है कि ध्यान साधने के बारे में इस तरह से बोलने से शायद कल मैं और एकाग्र हो जाऊं।
But that's what happens. Your attention goes from the physical senses.
तो ऐसा ही होता है आपकी जो भौतिक इंद्रिय है यहाँ से आपका ध्यान निकल के एकाग्र होता है।
If you're really deeply concentrated, somebody could come and shout at you. And you wouldn't notice.
तो अगर आप सही में बहुत एकाग्र हुए हैं, तो कोई आकर आपको आपके ऊपर अगर चिल्लाता भी है, तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, या आपके ध्यान में नहीं आएगा.
And well, you might sort of begin to notice.
और आप धीरे-धीरे इस बात को पहचानने लगोगे.
You'd have to choose whether to give your attention to it or not.
तो आपको आप ये चयन कर सकते हैं कि आपका ध्यान आपको वहाँ लगाना है या नहीं.
So when you withdraw your attention from the senses, you begin to experience these very beautiful and subtle. Mental states.
जब आपका ध्यान इन इंद्रियों की तरफ से निकालकर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको और एकाग्रता का अनुभव आता है.
And these are available to everybody. Available to everybody.
और ये सभी के साथ होता है.
But different people have a different facility for experiencing them.
लेकिन अलग-अलग लोगों के लिए अनुभव करने की अलग-अलग सुविधा हो सकती है.
For some people, it just seems to be temperamentally difficult. Some people just seem to slip into these states very naturally. And it's not that you're bad if you don't and good if you do. But everybody can get some taste of them, I think. So traditionally, these are called the dhyanas.
तो परंपरा में इसे ध्यान कहा जाता है।
And there are four of them in most accounts.
और इन चारों को चार ध्यान की अवस्थाएं कहा जाता है।
Sometimes there are five.
कभी-कभी ये पांच भी होती हैं।
But you remember, it's just a matter of how many pieces you cut the cake into.
लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान करिए, याद करिए कि आप केक को कितने हिस्से बनाना चाहते हैं, वैसे ही ये बात।
There's just one cake.
ये एक ही केक है।
You can cut it into four, you can cut it into five.
आप उसके चार टुकड़े कर सकते हैं या पांच कर सकते
हैं। You could cut it into 50 if you wanted.
या आप उसके 50 बना सकते
हैं। But let's cut it into four.
तो अभी हम कोशिश करते हैं इसको चार ही हिस्से में काटें।
So let's look at the first dhyana.
तो हम पहले ध्यान की तरफ देखते हैं।
So you let go of the senses.
तो पहली जगह पर आप अपने जो इंद्रियां हैं उनको छोड़ देते हैं।
You concentrate your mind on an object.
आप अपने मन को किसी विषय वस्तु पर एकाग्र करते हैं।
You may not even have an actual object. You just concentrate.
तो कोई निश्चित वस्तु नहीं होगी, फिर भी आप एकाग्र होते हैं।
But usually you use an object to bring about that concentration.
लेकिन आप हमेशा किसी वस्तु का उपयोग करते हैं ताकि आप अपना मन उस पर एकाग्र कर सकें।
So you've let go of the senses. Your mind is concentrated.
तो आप अपनी इंद्रियों के को जाने देते हैं, आपका मन आप इसी विषय पर एकाग्र करते हैं।
All sense of craving or hatred drops away.
और सभी प्रकार की जो द्वेष है या तृष्णा है, आप उसे बाजू में करते हैं।
There's still some thinking going on, but it's very subtle.
फिर भी आपके मन में कुछ विचार चलते रहता है, जो काफी सूक्ष्म विचार होता है।
You're just maybe reflecting on the meditation itself.
तो शायद आप इस समय ध्यान के ही ऊपर से चिंतन करते होंगे।
So some words are going through your mind, but they're connected with the meditation.
तो आपके मन से कुछ शब्द जा रहे होंगे, वो ध्यान से संबंधित होंगे।
And you feel very, very happy. The texts say that your body is filled with happiness. And indeed, there's a sense of inspiration flooding through you. What is known as preeti flows through you.
और इसे आपके शरीर के माध्यम से जैसे प्रीति का प्रवाह बहता है।
Is that a Hindi word? Does it mean the same? No. Yes. Okay. So there's preeti flowing through you.
तो आपसे प्रीति प्रवाहित होती है।
You feel a sort of physical thrill passing through your body.
जैसे आपके शरीर में कुछ शारीरिक जैसे जो क्या उसको
And you feel a great deal of pleasure flooding through your whole body. Your whole body is just filled with this happiness and this priti. The second dhyana takes that one stage further. You're not concentrating on the senses. Your mind is still quite focused. In fact, it's more focused still. In fact, you're so focused that there's no thoughts going through your mind. There are no words going through your brain. And the happiness and the priti get even stronger and deeper still. Well, there's further to go. In the third dhyana, you go even further. The priti stops. Not because you're sinking down, but because the process that's represented by priti is ended.
ये इसलिए होता है कि प्रीति से जो प्रक्रिया का संबंध होता है वो प्रक्रिया अभी समाप्त होती है.
What the priti represents is blocked energies of the body and mind being released.
तो प्रीति का ये मतलब ये व्यक्त करता है प्रीति कि आपके अंदर जो बंधित शक्ति है वो खुल गई.
All sorts of tensions in the body are released.
और शरीर के अंदर जो कुछ भी तनाव है वो सभी खुल गए.
And as they're released, you feel great pleasure.
और ऐसे तनाव को खुल जाने के बाद आपको बड़ा सुख का अनुभव होता है.
It's a bit like when somebody gives you a massage.
जैसे कोई आपके शरीर का क्या कहते हैं मसाज करता है.
Maybe you've got a sore shoulder.
जैसे कि आपके कंधों में कुछ आपको दर्द है.
And somebody just massages where the pain is.
और आपका जहां पर दर्द है वहां पर कोई आपकी मालिश करता है.
And there's some tension there because you've been having a difficult day.
तो आपका कड़ा कठिन दिन होने की वजह से आपके कंधों में कुछ तनाव निर्माण हुआ.
And the massage just releases that tension.
और इस तरह से मालिश करने से आपका ये जो तनाव निर्माण हुआ है शरीर में वो खुल जाता है.
And you feel great pleasure and ease because of that.
और इसकी वजह से आपको खुलापन लगता है सहजता लगती है आपके शरीर में.
So this priti is like that very deep release of tension.
तो प्रीति इसी तरह की है आपके अंदर जो कुछ तनाव है शरीर में गहरा वो प्रीति से खुल जाता है.
And when you get to the third dhyana, that release of tension is complete.
और जब आप तीसरे ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो इस तरह से शरीर के अंदर के तनाव का खुल जाना पूरा हो जाता है.
And you just feel very deeply happy and contented.
और आप पूरी तरह से गहराई से सुखी और संतुष्ट आपका अनुभव होगा.
Then you go on to the fourth dhyana.
फिर आप चौथे ध्यान की तरफ जाते हैं.
And in this stage, even the sukha is transcended.
अब इस अवस्था में सुख को भी सुख के भी आप पार जाते हैं.
It's not that you now feel unhappy.
ऐसी बात नहीं कि आपको अभी कुछ दुख का अनुभव हो रहा है.
It's not even that you feel nothing.
और ऐसी भी बात नहीं कि आपको कुछ भी नहीं लग रहा.
But you feel very, very deeply at peace, and still and contented.
लेकिन फिर भी आपको बड़ा शांत लगता है संतुष्ट लगता है.
So these are the four dhyanas.
तो ये है चार ध्यान.
As you withdraw from the senses, you experience more and more these deep states of happiness and joy.
तो जैसे जैसे आप इस ध्यान की अवस्था का अनुभव लेते हैं तो बहुत ही गहरा ऐसा संतुष्टि और सुख का अनुभव आपको आता है.
And anybody who's experienced them will know that they are really very pleasurable indeed.
अगर आपने किसी ने अनुभव किया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना सुखद अनुभव होता है.
And they're also very meaningful.
और ये बहुत ही अर्थपूर्ण होता है.
You feel as if you are doing something that's really worthwhile.
जैसे कि आपको ऐसा लगता है आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत ही अर्थपूर्ण है.
Now some people can experience these quite easily.
कुछ लोगों को ऐसा अनुभव लेना काफी आसान होता है.
I have to say that my own early experience with meditation was that I didn't find it very easy to experience this.
तो जैसे मुझे कहना चाहता हूँ मैं कि मेरे लिए शुरुआत में जब मैं करता था ध्यान तो मेरे लिए ये बात बिल्कुल आसान नहीं थी.
But it took many years for me to be able to experience something of them.
तो इसमें से कुछ बातों का अनुभव करने के लिए मुझे बहुत साल लगे.
In the lives that we lead most of the time, it's quite difficult to experience these states.
तो जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, उसमें इस तरह के अवस्थाओं का अनुभव आना काफी मुश्किल होता है.
But you can make some progress.
लेकिन फिर भी आप कुछ विकास कर सकते हैं.
Just day by day, if you keep on meditating, you'll get somewhere towards those states.
तो जैसे हर दिन आप ध्यान साधना करते रहते हैं, तो कुछ न कुछ मात्रा में आप ऐसे अनुभव की तरफ आगे बढ़ते हैं.
And that will give you great refreshment of the mind.
और इसकी वजह से आपको मन के बारे में काफी तजुलापन लगता है.
And great pleasure and happiness.
और बहुत सारा सुख और आनंद आपको मिलता है.
But if you want to go further, you really need to go away on retreat.
लेकिन इससे भी आगे अगर आपको बढ़ना है, तो आपको सही में शिविर में जाना पड़ेगा.
You need more solitude, more support for those states.
तो ऐसी अवस्था का अनुभव करने के लिए आपको और ज्यादा एकांत की और शांति की जरूरत है.
And well, you know that we in our TBMSG do hold meditation retreats.
और आपको ये पता होगा कि TBMSG में भी हम कुछ ध्यान शिविर लेते हैं.
And we're indeed setting up a special meditation retreat center.
और हम और खास ध्यान केंद्र भी शुरू कर रहे हैं.
The Dhammachari Chandrabodhi is setting up the Urgyen Sangharakshita Dhyan Bhavana Kendra.
Dhammachari Chandrabodhi Urgyen Sangharakshita Dhyan Bhavana Kendra का निर्माण कर रहे हैं.
And quite soon, when the work is done, he'll be holding special meditation retreats there.
और जब भी वो कार्य पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पर ध्यान साधना के शिविर लिए जाएंगे.
But we also hold retreats at Bordaran near Wardha.
और हम ध्यान के शिविर बोर्धरन में भी लेते हैं, जो वर्धा के पास में है.
We even hold them at here in the city in Nagaloka.
और ये नागलोक में, नागपुर शहर में भी हम ये सिखाते हैं.
And I know there are other retreat centers run by other groups of Buddhists.
और मुझे पता है कि और भी शिविर केंद्र होंगे, बाकी बौद्धों के बौद्ध लोग इसको चलाते हैं.
But if you're interested in pursuing meditation, I do recommend that you get away as often as you can on an intensive meditation retreat.
और मैं आपको सिफारिश करना चाहूंगा कि जैसे भी आपकी को समय हो, जाना चाहते हो, तो किसी भी ध्यान शिविर में आप जाइए.
And probably on that retreat you'll find you do make a lot more progress than you can just day by day in the midst of your life.
और शायद आप जैसे हर दिन ध्यान साधना करेंगे, तो दिन ब दिन आप कुछ अच्छा इसमें विकास करोगे.
And this will have a very strong tonic effect on your whole spiritual life.
और इसका बहुत ही अच्छा टॉनिक परिणाम आपके शरीर पर होगा.
It's very much like cleaning your mind.
तो जैसे कि ये आपके शरीर को बहुत ही स्वच्छ करेगा.
Clarifying your mind.
और आपके शरीर को जैसे सुधारेगा, स्वच्छ करेगा.
Brightening your mind up.
आपके मन को ये तजीला बनाएगा, तेज बनाएगा.
So that's the third stage in exploring Dhyana Paramita.
तो ध्यान पारमिता का विकास करने की ये तीसरी अवस्था है.
And there's one more stage.
और एक अवस्था की आवश्यकता.
Why are we doing all this?
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं?
Why are we trying to discover what's going on in our minds?
हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, इसकी खोज हम क्यों कर रहे हैं?
Why are we trying to concentrate our minds?
और हम अपने मन पर एकाग्र क्यों होना चाहते हैं?
Why are we trying to refine and purify our minds through the dhyanas?
ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और स्वच्छ क्यों करना चाहते हैं?
Well, of course, all those things will have a beneficial effect on our lives, whatever we do.
हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं, उस पर इसका निश्चित ही अच्छा परिणाम होगा.
But if we're really trying to practice the Dharma, then this will give us the basis for going further.
लेकिन अगर आप सही में धर्म का आचरण करना चाहते हैं, तो ये आपकी बुनियाद बनेगी आगे बढ़ने के लिए.
The Dharma is practiced in order to gain enlightenment.
धर्म का आचरण बुद्धत्व प्राप्ति के लिए किया जाता है.
The Bodhisattva path is followed so that the Bodhicitta can arise.
बोधिसत्व का मार्ग इसलिए चला जाता है, उस पर आचरण किया जाता है, ताकि आप अंत में बुद्ध बनो.
We practice the Dhamma so that we can see things as they really are.
हम धर्म का आचरण इसलिए करते हैं ताकि वस्तुएं जैसी हैं वैसी हम देखना चाहते हैं.
And we can't see things as they really are if our minds are confused, scattered and coarse.
अगर हमारा मन संभ्रमित है, विचलित है और इधर उधर फैले हुए हैं, तो इस तरह से हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे.
With clarifying the mind, so that it can see what's really there.
तो जब स्वच्छ मन होता है, तो हम देख पाएंगे कि वास्तव में क्या है.
And that's the fourth step.
और ये है चौथा स्तर.
It's trying to see things as they truly are.
और ये चौथी अवस्था मतलब वस्तुएं जैसी है वैसा देखने की देखना.
This final stage is what's known as vipassana.
ये आखिरी जो स्तर है उसे विपश्यना कहते हैं.
It corresponds to the arising of the bodhicitta.
और ये वही अवस्था कही जाती है जिसे हम बोधिचित्त का निर्माण कहते हैं.
It corresponds to the transition to a state of mind in which there is no self.
और ये इसका मतलब ये है कि ये अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ पर
It corresponds to the transition to a stage in which there's no self.
तो जहाँ पर अहम नहीं होता, स्व नहीं होता, उस अवस्था में पहुँचना है.
So it corresponds to the arising of the bodhicitta.
तो ये है वही अवस्था है जिसे हम बोधिचित्त का निर्माण कहते हैं.
It corresponds to the dawning of prajna.
और ये वही अवस्था है जहाँ पर प्रज्ञा की शुरुआत होती है.
But that's tomorrow's subject.
लेकिन ये कल का विषय है.
So I'm not going to say any more about it tonight.
इसलिए मैं आज इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा.
I just want to point out that this is the next step.
मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये अगला कदम है.
This is why we've been developing jhana.
और इसी के लिए हम ध्यान का विकास कर रहे हैं.
We're doing it so that the bodhicitta can arise.
हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हमारे अंदर बोधिचित्त निर्माण हो सके.
And but so far we've been understanding jhana paramita.
तो अभी तक हम ध्यान पारमिता को समझने की कोशिश कर रहे हैं.
बाबा साहेब talks about the bodhisattva entering into the dhyanas.
बाबा साहब बोधिसत्व ध्यान में प्रवेश करता है इस तरह की बात करते हैं.
The word that he uses is trances.
और
the English word trances, yeah.
तो जो शब्द का उपयोग करते हैं अंग्रेजी में बाबा साहब उसे वो ट्रांस कहते हैं.
But that corresponds to the Sanskrit dhyana.
तो इसका संस्कृत का जो अर्थ है वह है ध्यान.
And yes, the bodhisattva enters into the dhyanas.
तो इस तरह से बोधिसत्व ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है.
But Baba Sahib says that, or quotes the Buddha as saying that the bodhisattva enters into the dhyanas, but is not reborn in the corresponding heavens.
तो जैसे बाबा साहब इसमें लिखते हैं कि बोधिसत्व इसलिए ध्यान साधना की अवस्था में नहीं जाता है ताकि वह उसी तरह के देवलोक में जन्म ले.
The ancient Buddhists saw that each of those dhyanas corresponded to a sort of world.
तो प्राचीन बौद्धों का ऐसा मानना था कि ये एक एक ध्यान की अवस्था जो है वह उसी तरह के देवलोक की अवस्था के समान है.
And they thought that you could be reborn into that world.
और वो कहते हैं कि इस ध्यान की अवस्था में जाकर आप उस देवलोक में उत्पन्न होते.
So what does that mean for us?
तो हमारे लिए इसका मतलब क्या है?
We don't have to work out whether we believe in rebirth or not.
हमें इस बात में विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है कि पुनर्जन्म है या नहीं है.
That's not really the point.
इसका ये मुख्य मसला नहीं है.
The point is, what does it mean that he doesn't settle down in those worlds?
तो इसका अर्थ क्या है कि वो किसी ऐसे देवलोकों में नहीं जाता.
It means that the bodhisattva doesn't just retire into that dhyana.
तो इसका मतलब यह है कि बोधिसत्व उस ध्यान की अवस्था में जाने के बाद अपनी सेवा निवृत्ति नहीं लेता.
I've described them to you.
और उनको इन चारों अवस्थाओं को मैंने आपको वर्णन किया है.
And I'm sure that they sound quite attractive.
और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ध्यान की अवस्था बड़ी आकर्षक है.
I'm sure that some of you will be thinking, well, I'd really like to be in those states.
और आपके से कुछ लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि ऐसी ध्यान की अवस्था में मैं रहना चाहता हूँ.
So you can imagine that if you did get into them, well, you'd think, okay, I don't want to come out.
अब ऐसी बात स्वाभाविक है कि आप जब इस अवस्था में जाते हैं तो शायद आपको लगे कि इस अवस्था से मैं बाहर नहीं आना.
You just want to retire and enjoy those states.
और आप सभी बातों से अपना निवृत्त होना चाहेंगे और इसी अवस्था का आनंद लेना चाहेंगे.
But the bodhisattva has undertaken the vow to help all beings.
लेकिन बोधिसत्व ने प्रतिज्ञा की है सभी प्राणियों को मदद करने.
So it doesn't want to get stuck in those states.
इसलिए बोधिसत्व इसी अवस्था में नहीं रहना चाहता.
He enters those states in order to purify his mind.
अपने मन को शुद्ध करने के लिए बोधिसत्व इस ध्यान की अवस्था में जाता है.
He enters those states or she enters those states in order to bring other people into them.
बोधिसत्व इस अवस्था में जाता है या जाती है ताकि लोगों को वो बाहर निकालने के लिए मदद कर सके.
But the bodhisattva is trying to help other beings.
लेकिन बोधिसत्व दूसरे लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा है.
And so is active in the world.
और वो दुनिया में कार्यरत होता है.
So the bodhisattva both enjoys meditation, but also engages in the world.
इसलिए बोधिसत्व ध्यान का आनंद तो लेता ही है, लेकिन दुनिया के साथ भी आनंद लेता है.
And this is probably what we all need to be trying to do.
और शायद यही बात है जो हम सभी ने करने की कोशिश कर रहे हैं.
This is the bodhisattva path.
और यही बोधिसत्व का मार्ग है.
You absorb yourself in meditation, but you act in the world.
तो आप अपने आप को ध्यान साधना में ले जाते हैं, एकाग्र होते हैं और आप दुनिया में भी कार्य करते हैं.
The bodhisattva can rest in meditation quite naturally and spontaneously.
Bodhisattva apni dhyan sadhana mein kafi swabhavikta se sahajta se vishranti le sakta.
Once the bodhicitta has arisen, dhyana is your home.
Jab bodhicitta apni nirman hota hai, dhyan hi aapka ghar hota hai.
Just quite naturally and spontaneously you dwell in those states.
To bahut hi sahajta se is avastha mein reh sakte hain.
And all the time you act from those states.
Aur hamesha aap isi avastha se karya karte hain.
Now Baba Sahib quotes the Buddha as saying that not only do you get into those states yourself, but you encourage others to get into them.
तो बाबा साहब यहाँ पर बताते हैं कि आप इन अवस्थाओं में खुद ही नहीं जाते, बल्कि बाकी लोगों को भी जाने के लिए मदद करते हैं.
And I think this is something that we can offer people.
और मुझे लगता है कि यही बात हम लोगों को बता सकते हैं.
If in the midst of modern life, it's very rare to get those opportunities for deep experience.
तो इस आधुनिक जगत के मध्य में इस तरह के अनुभव लेने की मौका मिलना बहुत मुश्किल है.
And that's something that we can offer to people as Buddhists.
और एक बौद्ध करके यही एक बात है, ऐसी बात है जो हम लोगों को दे सकते हैं.
That they may come to it from different points of view, but at least we can offer it to them.
तो उनके कोई अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन इस बात को हम उन्हें दे सकते हैं.
It's not specifically a Buddhist thing.
तो ये निश्चित ही कोई बौद्ध बात नहीं है.
It's just human.
ये एक मानवीय बात है.
So we can offer it to all human beings.
इसलिए आप सभी मानवों को ये दे सकते हैं.
They don't have to be Buddhists.
तो उन्होंने बौद्ध होना ही चाहिए, ये कोई आवश्यकता नहीं है.
People in other traditions also meditate.
अन्य परंपराओं के लोग भी ध्यान साधना करते हैं.
And perhaps it's important to realize we share a lot with them.
और इस बात को पहचानना आवश्यक है कि उनकी बहुत सारी समानताएं भी होती हैं.
But in the Buddhist tradition, there's a great deal of understanding and knowledge about meditation.
लेकिन बौद्ध धर्म में ध्यान साधना के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान है और समझदारी.
So this is something we can offer to people.
और यही बात हम लोगों को दे सकते हैं.
The chance to meditate.
ध्यान करने का मौका.
The circumstances within which you can meditate.
और ऐसी परिस्थितियां जिसके अंदर आप ध्यान कर सकते हैं.
And knowledge about meditation.
और ध्यान साधना के बारे में जानकारी.
So I'd suggest that if you wanted to follow in Baba Sahib's footsteps, this is one thing you could do.
तो मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहब की राह पर चलना चाहते हैं तो आप ये बात कर सकते हैं.
You can learn to meditate yourself.
आप स्वयं ध्यान साधना करना चाहते हैं.
If you're already meditating, you can meditate more deeply.
अगर आप अभी ध्यान साधना कर रहे हैं तो आप और अच्छी गहरी ध्यान साधना कर सकते हैं.
And you can show other people how they can do it.
और दूसरे लोगों को आप ये बता सकते हैं कि ध्यान साधना आप कैसे कैसे की जाती है.
You don't have to be an expert.
आपको इसके लिए तज्ञ निष्णात होने की जरूरत नहीं है.
You just have to be sincere in your own meditation practice.
आपको केवल अपनी ध्यान साधना के अभ्यास में ईमानदार होने की आवश्यकता.
And you can at least introduce people to the practices that you're doing.
और कम से कम लोगों को आप जो ध्यान साधना खुद करते हैं उसका परिचय करा देते हैं.
And I think that every one of you could do that if you wanted to.
और मुझे लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है अगर आप चाहते हैं.
So I do encourage you all to think about this.
और इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आप ऐसा करिए.
Just reflect, do you want that meditation in your own life?
तो चिंतन करिए कि क्या आपको इस तरह से ध्यान साधना आपके जीवन में चाहिए.
You may not want to, it may not be interesting to you.
तो शायद आपको इच्छा नहीं होगी, आपको उसके प्रति दिलचस्पी नहीं होगी.
It's up to you.
ये आप पर है.
You can be a good Buddhist and not meditate.
तो आप ध्यान न करते हुए भी अच्छे बौद्ध हो सकते हैं.
But if you do want to follow the Bodhisattva path, some experience of meditation is probably necessary.
लेकिन अगर बोधिसत्व के मार्ग का आचरण करना है तो ध्यान साधना का कुछ अनुभव जरूर आवश्यक होता है.
So if you do want some meditation in your life, how can you bring it there?
तो अगर अपने जीवन में आप कुछ ध्यान साधना करना चाहते हैं तो आप कैसा करें?
What can you do to make meditation a regular part of your experience?
अपने जीवन का अनुभव, एक नियमित ध्यान साधना का अनुभव अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं?
And then what can you do to offer it to others?
और दूसरों को देने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
And if you can do that, if you can experience meditation yourself and offer it to others, well, you will be practicing Dhyana Paramita.
अगर आप ऐसा करते हैं, स्वयं ध्यान करते हैं और दूसरों को करने के लिए मदद करते हैं, तो आप ध्यान पारमिता का आचरण.
And we've seen that that would mean that you were following in Baba Sahib's footsteps.
और मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम बाबा साहब के मार्ग पर चलते हैं.
And you would be treading the Bodhisattva path.
और आप बोधिसत्व के मार्ग पर चलते हो.
So let's conclude, as we've been doing over the last few nights, by reciting the four Bodhisattva vows.
तो हम इसी का समारोह उसी तरह से करते हैं जैसे हर दिन हम करते आ रहे हैं चार प्रतिज्ञाओं को लेकर.
I stress every night that you're free to do it or free not to do it.
तो मैं हर शाम ये बताता हूँ कि ऐसा करने के लिए या पठन न करने के लिए आप पूर्णतः मुक्त हैं.
It's up to you.
यह आप पर
है. I don't mind.
अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा.
But if you want to, you can just join in after us.
तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे पीछे आप कह सकते हैं.
And then we'll recite the transference of merits.
और उसके बाद हम पुण्य का त्याग जो है उसका पठन करेंगे.
That is offering to all beings any benefits we've got from coming together here tonight.
तो आज शाम को इकट्ठा होकर जो कुछ पुण्य हमने संपादन किया है वो हम सभी प्राणियों को प्रदान करेंगे.
So we don't just keep it to ourselves, we share it with other beings.
ताकि हम केवल अपने ही अंदर वो नहीं रखेंगे बल्कि सभी को वो दे देंगे.
So first, the four vows.
तो पहले चार प्रतिज्ञाएं.
There are beings without limit. I vow to convey them all across.
इस संसार में प्राणी असंख्य हैं. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उन सबको भवपार करने की.
There are kleshas in us without number. I vow to extinguish them all.
मुझमें दोष अनंत है. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उन सबको नष्ट करने की.
There are truths without end. I vow to comprehend them all.
सत्य अनंत है. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उन सबको समझने की.
There is the Buddha's way without comparison. I vow to accomplish it perfectly.
बुद्ध का मार्ग अतुलनीय है. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उन सबको प्राप्त करने की.
एवं सब करके
मैंने जो पुण्यार्जन किया है
उससे सब प्राणियों का सर्व दुख शमन करी बनूं. जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त अंगिनात प्राणियों के नाना प्रकार से भोगी होते हैं वैसे ही आकाश व्याप्त प्राणियों के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीव्य हूँ जब तक कि सब शांति का लाभ न काले. जय भीम.